اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پروگرام قیام سے قیام تک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام قیام سے قیام امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جناب مختار کے زمانے تک رونما ہونے والے واقعات کی تحلیل پر مبنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے علماء اور دانشور حضرات جو ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ، اپنے ایس ایم ایس اور ای میل کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب۔ آئیے ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
وعلیکم السلام۔
مولانا صاحب، قیام امام حسین علیہ السلام کا پیش خیمہ، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ اور ان کا سیاسی تدبر اور ان کی صبر، استقامت اور اس زمانے کے سیاسی حالات میں ان کا اہم کردار ہے کہ جو سبب بنا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد حجت کو تمام کرتے ہیں اور میدان کارزار میں وارد ہوتے ہیں۔ ایک خاص زمانہ ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے بچپن کو اور ان کی جوانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی بھی شخصیت کے اہم زندگی کے اہم واقعات میں اس کی بچپن اور جوانی کا بہت کردار ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پر امام کے بچپن اور جوانی کے حوالے سے کچھ واقعات پر یا کچھ ایسے حادثات جو ان کی زندگی میں رونما ہوئے، ان پر آپ روشنی ڈالیں۔
بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں اپنا سلام پیش کروں گا۔ اور آپ، بہرحال بہت واضح سی بات ہے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اور اس کی شخصیت کے نکھار میں اس کے بچپن، اور بچپن میں بھی کس فضا اور کس ماحول میں وہ پل رہا ہے، اس کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن تقریباً آپ کی زندگی کے 7 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے۔ اس کے بعد تقریباً 7 سال 2 مہینے آپ اپنی مادر گرامی جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش مہر و الفت میں پلے بڑھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان کی شخصیت کو دوسروں کے سامنے پہچنوایا اور انٹروڈیوس کروایا کہ یہ کون ہے، انہیں پہچانو، ان کی عظمت کو سمجھو، درک کرو، یہ اسلام کے پاسبان ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح ٹریٹ کیا ہے اور اس طرح ان کی پرورش کی ہے، اس طرح ان سے پیش آئے ہیں بچپن میں، کہ جو جس بچے کے ساتھ بھی اس طرح اگر اس کی پرورش کی جائے تو کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت ایک باکمال اور نکھری شخصیت ہوگی۔
بے شک
آپ محسوس کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے زمانے میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نہ صرف یہ، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بچوں سے بعض اوقات نصیحت یا وصیت کی، ان سے ان کو وعظ و نصیحت کی اور ان کو سمجھایا، ان کو امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بتلانا چاہا، تو اس میں آپ نے فرمایا، تاکید کی کہ تم سب ہماری اولاد ہو، لیکن حسن اور حسین رسول خدا کی اولاد،
رسول خدا کی اولاد،
یہ رسول خدا
فضیلت
فضیلت بتائی آپ نے۔ اس کے بعد متعدد مقام پہ، ابھی بچے ہیں، ظاہری طور پر بچپنا ہے آپ کا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین امامان ہیں، یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدہ، چاہے یہ قیام کریں، قاما او قعدہ کا ظاہری ترجمہ اگر کیا جائے چاہے یہ کھڑے ہوں
چاہیے
یا بیٹھیں،
بیٹھ جائے،
لیکن بہرحال کلام رسول کو اس طرح اگر کلام رسول کا ترجمہ کیا جائے تو ستم ہوگا ذات رسول پہ بھی اور آپ کے کلام پہ بھی۔ نہیں، قامہ و قعدہ کا مطلب چاہے یہ میدان کارزار میں آ جائیں، چاہے یہ گھر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ امت کی رہنمائی، امت کی ہدایت کی تدبیر اور
اس کو آج ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو
جی،
कि जो हालात और वाक़ियात इमाम हसन के साथ पेश आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए, तो रसूल दोनों की तायद करते हुए नज़र आ रहे हैं उससे बहुत पहले,
जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही
कि अगर हसन घर बैठ जाएं और हुसैन मैदान में आ जाएं
जी,
तब भी जो है वो कोई फ़र्क
कोई
नहीं है।
फर्क नहीं होने वाला, यानी ये दोनों ही इनकी। अच्छा एक बात और आप इसको गौर करें, उस बचपन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज की तरफ जो अहम नुक्ता है उसकी तरफ इशारा किया, क्या कि इनकी जिंदगी चाहे ये घर में बैठे हों या कयाम करें मैदान कारजार में आ जाएं या सुलह कर लें, जैसा भी इनका रवैया हो, इनकी शख्सियत इज्तिमाई और हिदायतगर होगी। इन्होंने इनका हर कदम हर अमल उम्मत के लिए होगा, इनका सुकूत भी उम्मत के इमामान है, इमामत से जुड़ा है कयाम और कौउद को, इमामान है, चाहिए कयाम करें चाहिए खामोशी के साथ घर बैठें, इनका दोनों ही अमल उम्मत की इमामत और रहबरी से मुताल्लिक होगा। एक सबसे अहम चीज़, और भी बहुत से मकामात पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ साथ, एक खूबी और भी है बहरहाल अगर आप नफसियाती एतबार से देखें और साइकोलॉजी को अगर आप गौर करें, कि दो बच्चे जिनमें सिनी एतबार से और उम्र के एतबार से बहुत ज़्यादा फ़र्क व फासला नहीं है, एक आम एक पैगाम भी है, तरबियती पैगाम भी है कि किस तरह लोग अपनी औलाद की तरबियत करें जब बच्चे घर में छोटे हों। उमूमन लोग अक्सर इफरात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई नया बच्चा घर में आ गया तो दूसरा बच्चा उसकी तरबियत
निगलेक्ट हो जाता है वह।
उसकी तहतुशवा जाती है, निगलेक्ट होने लगता है,
जी
लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत ज़रीफ़ पहलू है ये अगर ज़िंदगी में गौर किया जाए हजरत की, कि दोनों को हर जगह एक साथ इंट्रोड्यूस कराया, मिसाल के तौर पे दोनों की अजमतों को अक्सर मकाम पे एक साथ बताया जहां दोनों खुसूसन एक साथ रहे। अब जहां अकेले रहे, मिसाल के तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले मस्जिद पहुंच गए तो आपने कहा आदा हुसैन फारफू, क्योंकि वो अकेले पहुंचे, या जहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम अकेले रहे वहां एक दूसरी बात है, लेकिन जहां दोनों साथ रहे, ये अलबत्ता ऐसा हम गुमान भी नहीं कर सकते कि अलयाज़ु बिल्लाह इन दोनों भाइयों में कभी इख्तिलाफ का इम्कान है, नहीं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों की तरबियत के साथ साथ हमें सलीके तरबियत भी सिखा रहे हैं।
अच्छा, नहीं, इसके साथ साथ एक चीज़ अगर हम दूसरा पहलू इसका देखना चाहें, तो इतना ज़्यादा दो बच्चों को एक लेवल देना और एक एक ही अंदाज़ से दो बेटों की या दो बच्चों की जो है वो तारुफ करवाना उनका, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब तारीख पे गौर करते हैं, देखते हैं, तो तारीख में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत इज्जत और एहतराम देते हुए नज़र आते हैं अपने भाई को,
ये
हालांकि इतने ज़्यादा दोनों भाइयों में फ़र्क भी नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बता, ये आप देखें खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाती शख्सियत और आपकी अजमत और आपकी मारफत की दलील। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ एक बड़े भाई की हैसियत से इमाम हसन का एहतराम करते थे, वहाँ उसके साथ ही साथ आप इमाम होने की हैसियत से भी उनका एहतराम करते थे। ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये अकदार हैं कि जो एक दिन में जाहिर नहीं होती हैं। मासूम के लिए तो बहरहाल खुदा की तरफ से उसकी तरबियत होती है और खुदा उसकी शख्सियत का जिम्मेदार होता है, लेकिन आम जिंदगी में भी अगर हम इसको चाहें आम जिंदगी में देखना चाहें आम लोगों की जिंदगी में, तो उसमें भी ये सारे अकदार एक दिन में जाहिर नहीं होते। दरख्त मिसाल के तौर पर उसका पहले बीज बोया जाता है, फिर वो निहाल की
जी
शक्ल इख्तियार करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है,
परवान चढ़ता है,
परवान
बिल्कुल
चढ़ता है। यही हाल हम भी अपनी ज़िंदगी में मिसाल के तौर पे, वो माँ बाप जो अपने बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं, उन दोनों के दरमियान उल्फत मोहब्बत इज्जत व एहतराम बरकरार कराना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बचपन से, अभी बीज बोया ही नहीं उस वक्त से, इन्हें इस बात का लिहाज करना होगा। मैं एक बात और कहता चलूँ जो मुर्तबित है हमारे और रब्त है हमारी बात से आज, कि बाज़ उलमा से पूछा गया कि हम अपनी बच्चे की तरबियत कैसे करें, तो आपने फरमाया कि विलादत से पहले, विलादत से बज़ाहिर अल्लामा तबाताबाई की तरफ मंसूब है ये बात, कि आपसे किसी ने पूछा तो आपने कहा विलादत से पहले अपने औलाद की तरबियत करो, तो बहरहाल शख्सियत में असर होता है।
बिल्कुल
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस तरह दोनों भाइयों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, उनकी शख्सियत साजी में भी असरअंदाज है ये, और उम्मत के लिए पैगाम भी है कि किस तरह बच्चों की तरबियत करनी
तरबियत की
चाहिए।
जाए बच्चों की।
ये तो आपकी हमराही और आपका साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, लेकिन बहरहाल शहजादी जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी अजीम किरदार अदा किया है आपकी तरबियत।
बिल्कुल
आप एक तारीखी जुमला देखें, बड़ा अजीब सा वाक़या है, आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आगोश मिले हैं लिए, और जैसे बच्चों को लोरियां सुनाते हैं हम लोग, खेलते हैं बच्चों के साथ, तो आपने एक अजीब शेर पढ़ा, मैं उसका एक मिसरा आपकी खिदमत में पेश करूं कि या बुनैया हसन, ए मेरे बेटे हसन, इश्बे अबा का अबल हसन। अभी बचपन में इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहजादी जरा बच्चे को खिला रही हैं
जी
और लोरियां सुना रही, आप कहती हैं इश्बे अबा का अबल हसन, बेटा अपने बाप अबल हसन की तरह रहो।
सही।
वला तुवाले जल एहन, और देखो वाबुदिल्लाह ज़ामिनन, उस खुदा की इबादत करो कि जो तमाम नेमतों और मिन्नतों का मालिक है।
सही।
वला तुवाले जल एहन, और देखो कभी अहले शर से दोस्ती ना रखना, रफाकत ना रखना। वखला अनिल हक रसन, और हक के गिर्दोपेश जो गिरा लग जाती है कभी कभी, वो मुसीबतों में जो मुबतला हो जाता है, हक हक को मुसीबतों से निजात अता करो। ये किस वक्त शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह
जब गोद में,
जब आप गोद में। अब इस खुद इस जुमले की अगर तहलील की जाए, सिर्फ मैं एक दो पहलू की तरफ इशारा करूं कि सबसे पहले आप देखें जन और शौहर में क्या एतमाद है एक दूसरे के बनिस्बत। शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अपने बेटे से कह रही है कि अपने बाप जैसे बनो।
बिल्कुल,
यानी कितनी ज्यादा साबित और बाअज़मत शख्सियत थी हजरत अमीर अलैहिस्सलाम की शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नज़दीक।
बिल्कुल,
ऐसा हमारे माशरे में बहुत कम होता है। अक्सर जो है जब माएँ बच्चों को खिलाती हैं तो या तो मिसाल के तौर पे दुनिया में फ़र्ज़ कीजिए किसी अदाकार किसी मशहूर शख्सियत का नाम लेके जो है
अच्छा, इन
बच्चों को
सारी
लोमिया
चीज़ों से
समझ।
सरफे नज़र करते हुए एक चीज़ और जो हम बच्चों की तरबियत में जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि अभी इसकी ये उम्र नहीं है कि
हम
हम
उससे
इसको अभी
खिताब
ये
नहीं
बात
करते,
करें,
बहुत
उससे
अच्छी बात।
खिताब करें,
हाँ
अभी इसकी ये उम्र नहीं हुई कि हम इससे उस लेवल की बात करें। अच्छा, अगर कोई करता हुआ भी नज़र आए तो उसको भी चुप करा दिया जाता
हाँ
है कि नहीं अभी चुप रहो,
अभी
ये
इस लायक
बच्चा
नहीं है
अभी
बच्चा।
छोटा है, इस लायक नहीं है, इसके सामने तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें
बिल्कुल
कर रहे हो। तो ये इसका बहुत ही अच्छा जवाब जनाबे जहरा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी
कि
आगोश में लोरी
बचपन
सुनाते
में
हुए दे दिया।
ही, यानी कहते हैं ना अकदार खूबियां बचपन में ही सिखाई जाती हैं।
जी
आपने बचपन में ये कहा कि खुदा की इबादत करो, बंदगी खुदा का पैगाम एक। दूसरी बात ये कि उन लोगों की सीरत को इंतखा, यानी आप अगर देखें सूरह अलहम्द का तर्जुमा है, एक तफसीर है सूरह अलहम्द की,
जी
ये लोरी नहीं है, बल्कि बच्चे को खिला नहीं रही बल्कि सूरह अलहम्द की तफसीर कर रही है कि सबसे पहले खुदा की इबादत करो,
जी जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, अर्रहमान अर्रहमानिर्रहीम,
अर्रहमान
मालिक
अर्रहीम,
यौमिद्दीन, ठीक है। उसके
गैरिल
बाद
मग़दूब अलैहिम
आखिर
वलद
गैरिल
दाललीन।
मग़दूब अलैहिम वलद्दाललीन।
यहाँ एक इजाज़त चाहूँगा, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नाज़रीन ने कराम, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में। हमारी बात चल रही है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और ख़ास तौर पे उनके बचपन के हवाले से। तो मौलाना साहब, ये जो जनाबे फातिमा अपनी गोद में उनको लोरी सुना रही हैं, हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी
जी
कि किस तरह उसमें तरबियत के सारे पहलू मौजूद हैं।
जी
और जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक बच्चे को हम ये रोकते और टोकते हैं कि ये उसकी उम्र से बड़ा काम है, उसको भी ना कहा जाए, उसके सामने ये जिक्र ना किया जाए, ये बातें ना की जाएं, लेकिन वो बच्चा, ये हमारी गलती है, इश्तबा है ये हमारा, जो
जी
हम अपनी आम ज़िंदगी में अंजाम दे रहे होते हैं।
जी
दरहकीकत जनाब फातिमा ने अपने इस लोरी में जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दे रही हैं उसमें साफ और वाज पैगाम दिया है
कि किस तरह बच्चों की तरबियत की
किस
जाए।
तरह बच्चों की तरबियत की
जी
जाए।
बहरहाल इन बातों पे हमें गौर करना होगा, यानी हमारे माशरे की माएँ, हमारे वालदैन माशरे में जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं उन्हें इन चीज़ों पे, कि देखिए आज दुनिया भर में हर मज़हब, हर मकतब और हर मिल्लत और कौम का एक ये बहरहाल क्या नाम है उनका, उनकी कोशिश और उनकी सही तलाश इस बात पे वो कर रहे हैं कि अपने बच्चों की पर्सनालिटी किस तरह डेवलप करें,
जी
किस तरह उन्हें शख्सियत, उनकी शख्सियत साजी करें, किस तरह उनको शख्सियत अता करें। ये बचपन में शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह की लोरी, ये उन्हें शख्सियत साजी में बेहतरीन किरदार अदा करती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत। अलबत्ता मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि मासूम की शख्सियत साजी का जिम्मेदार खुदा
खुदा
होता है,
है।
ये वही तालीम है, एक एक सबक दे रही है शहजादी हमें कि इमाम बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। तो अब ऐसे माहौल में, ऐसी फिजा में कोई भी बच्चा अगर पलता है और बड़ा होता है, तो यकीनन आप जितनी भी यानी मुआशरे की और इंसानी मुआशरे की जितनी भी अजीम शख्सियतें हैं, आप उनके बचपन के ज़माने को देखिए। कतान ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान का बचपन किसी साजगार और अच्छे माहौल में ना गुजरा हो। साजगार से मुराद अगर किसी के जहन में आए कि माल और दौलत और सरवत, नहीं मुराद नहीं, बल्कि अच्छी फिजा में तरबियत। मुमकिन है एक शख्स सूखी रोटी खा के पला हो बचपने में, लेकिन उसकी शख्सियत मजरूह ना हुई हो बचपन में।
जी,
शख्सियत को परवान चढ़ाना जिस्म और जिस्मानियत के परवान से कहीं ज़्यादा
और
अहम
वो
होता है।
जितना आज़ाद वो बच्चा अपनी अपने बचपने को गुजारेगा,
जी
उसकी जवानी और नौजवानी या उसके बुढ़ापे में उसके असरात वाज़े तौर पे
जाहिर है,
नज़र आएंगे,
यकीनन यकीनन।
और जितना वो बच्चा नफसियाती दबावों में
जी
पले बढ़ेगा
जी जी
उसके असरात उसकी जवानी और
अलबत्ता मैं यहाँ एक बात और आपकी मजीद वजाहत के लिए अर्ज करता चलूँ कि आज़ादी से किसी के जहन में ये तसव्वुर ना आए कि जो आज़ादी आज
हाँ
दुनिया
नहीं,
में
बिल्कुल
राइज है।
बिल्कुल
आज़ादी से मुराद वो आज़ादी के जो अखलाकी हदूद के अंदर हो,
जी जी बिल्कुल
जिसमें उसकी रूह परवान चढ़े, उसकी रूह खुदा से आशना हो, नज़दीक हो, उसके सामने अकदारों मेयारात इस्लामी अकदार वाज़े हों,
हाँ,
तो
यानी
ये बच्चा
शरीयत के
यकीन
दायरे में रहते
शरीयत के
हुए
दायरे
आज़ादी।
में,
जी हाँ,
तो ये शख्स वाकई एक निखरी शख्सियत निकलेगी और एक बाकमाल शख्स होगा, और आइंदा मुआशरे में ऐसे अफराद बासर होंगे और मुआशरे की तब्दीली में इनका अच्छा खासा किरदार भी होगा।
यानी ये इतना छोटा सा वक्त जो इमाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा है और अपनी वालदा माजदा जनाब फातिमतुज़्ज़हरा
जी
सलामुल्लाह अलैहा के साथ गुजारा है,
जी
वो कितना ज़्यादा
कितना ज़्यादा अहम
उनके
था।
ऊपर असर गुजार
जी
है।
जी
अलबत्ता ये चीज़ खुदा की तरफ से होती है, लेकिन बहरहाल उस खुदा के
बहरहाल
उस पैगाम
मासूम,
को
देखिए
पहुँचाने के लिए।
मासूम का काम तरबियत होता है
जी
मुआशरे की भी। बैक वक्त अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शहजादी जहरा सलामुल्लाह अलैहा अगर अपने बच्चे की तरबियत कर रही हैं, तो उनकी तरबियत के साथ साथ मुआशरे को तरबियत का सलीका भी सिखा रही हैं।
बिल्कुल
ये हम महदूद निगाह से ना देखें कि वो अपने बच्चे की तरबियत कर रही हैं, या
जी,
मसलन नहजुल बलागा में आप मुतअद्दिद मकामात पर देखते हैं मौलाए कायनात अलैहिस्सलातुस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, या अपना वसीयतनामा जो आपने इमाम हसन अलैहिस्सलातुस्सलाम के दिया। तो क्या आया इमाम हसन ही तनहा उसके मुखातब है? नहीं, पूरा इंसानी मुआशरा उसका मुखातब है।
बिल्कुल सही। अच्छा, हम अब बचपने से थोड़ा सा आगे आते
जी
हैं,
जी
हमारे पास वक्त की कमी भी है। इमाम अब जनाबे फातिमा तो जहरा भी नहीं है, जनाबे रसूल खुदा भी नहीं है, इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब जो दौर है इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ का दौर है, उस माहौल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का किरदार, हमें कैसा किरदार मिलता है?
बहुत अच्छा सवाल
बहरहाल
है।
उसके कुछ पहलू तो हमारे लिए बहुत वाज़े हैं, जो उलमाए कराम, खुतबाए कराम, मेंबरों से इमाम की सखावत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बहरहाल मैं चाहूंगा कि कुछ और ऐसे पहलू, जिस तरह हमने
जी
बचपन पे गुफ्तगू की,
जी
इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी
जी
नहीं थी, तो उस पे आप रोशनी डालें।
बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जवानी में, क्योंकि बहरहाल सखावत का अगर हम जलवा देखना चाहते हैं तो हमें जवानी में देखना होगा, और वो बाकायदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप देखें। ये बात तो बहुत मशहूर है कि कितनी बार आपने अपना सारा साजो सामान, सारा सारा माल अपना, सारी दौलत अपनी खुदा की राह में दे दी। लेकिन उसके कुछ ख़ास नमूने आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप हज के लिए जा रहे थे, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र, ये तीनों एक साथ हज के लिए निकले। रास्ते में बहरहाल कुछ इत्तेफाक हुआ, कहीं साजो सामान जो था आपके हमरा वो कहीं रह गया, या मिसाल के तौर पे बाद लोग कहते हैं कि चोरी हो गया। अलबत्त हमारा मुआशरा बहरहाल शायद इस बात को उसको दर्क करने में ज़रा सा संगीनी हो उसके लिए कि कैसे मासूम का सामान चोरी हो गया। मासूम बहरहाल कभी कभी अगर आम ज़िंदगी अगर बसर करते थे तो लोगों को दर्स व सबक देने के लिए,
जी
मिसाल के तौर पे मैं इस बात की वजाहत के लिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर में, पूरे घर में अपनी कनीज़ को तलाश कर रहे हैं। फिर तलाश करने के बाद फिर इस बात की तरफ इमाम को एहसास था कि लोग समझेंगे कि इमाम जो है इल्म गैब का आलिम नहीं है। फिर इमाम ने तलाश करने के बाद फिर बताया भी कि लोग समझते हैं कि हम क्या इल्म गैब के आलिम नहीं, हम चाहें तो जान सकते हैं।
जी हाँ,
तो इमाम अगर चाहे तो वो इलाही इल्म जो इमाम को दिया गया है खुदा ने, या इलाही कुदरत जो अता की है खुदा ने दी है उनको, उसके साथ और उसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन आइम्मा आम हालात में आम ज़िंदगी बसर करते थे, ये खुदा की तरफ से उन्हें हुक्म था ये मामूरियत थी उनकी कि आम जिंदगी में आम हालात के साथ जिए। तो खुलासा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का साजो सामान, तीनों तीनों का साजो सामान छूट जाता है, कहीं कोई ले जाता है। तो आप रास्ते में पहुंचे, अब बहरहाल मक्के की तरफ सफर, हज के लिए जा रहे हैं आप, और हज का सफर, और धूप की शिद्दत और भूख और प्यास, रास्ते में खेमा नजर आया, आप नकुल बाप के अंदर वारिद हुए। बहरहाल अरब का रिवाज आप जानते हैं, अगर कोई जियाफत का तकाजा करता था या कोई मेहमान आ जाता था तो जो कुछ उनके पास हुआ करता था वो दे देते,
पेश कर
पेश कर
दिया।
देते थे। बहरहाल ये इस्लाम से पहले भी ये चीज़ थी, इस्लाम के बाद भी मेहमान नवाज तो उन्हें कहा ही जाता था। एक ज़ईफ़ा थी अंदर, इमाम ने कहा कि बहरहाल पानी पिलाओ, उसने पानी फराहम किया, कहा कि वो पानी रखा है पी लीजिए, कहा कि हमें भूख लगी है खाने के लिए कुछ दो। तो उसने कहा भाई हमारे पास कुछ नहीं, ये गोसफंद है, आप इसको ज़बह कीजिए, इसे खा लीजिए, यही मेरा साजो सामान। तो खुलासा उसने कहा आप ज़बह कर लीजिए इसको। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर, ज़बह किया और उसको खाया, थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद जब गए, तो जाते वक्त निकलते वक्त ये कहा उसने, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़ईफ़ा से कहा कि देखो जो कुछ तुम्हारे पास था तुमने हमें दे दिया, और हम बहुत ममनून और मशकूर हैं तुम्हारे, और तुमने बहरहाल अपना सरमाया हुआ हमारे हवाले किया। जब तुम हमसे दोबारा मिलना, हम वापसी में इसी रास्ते से गुजरेंगे, हमसे मिलना तो हम इंशाल्लाह इसका बदला और इसके एवज में तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में नवाजेंगे। आप देखें, एक गोसफंद, एक शब का आराम, और रहने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बिस्तर भी नहीं था, लेकिन बहरहाल हद से, अब वो
जितनी खिदमत की
जितनी खिदमत की उसने, वो इमाम हसन ये तीनों चले गए। जब उस खातून का शौहर आया तो वो बहरहाल कि तुमने सारा हमारा सरमाया हुआ लुटा दिया,
जो था वो सब चला
हाँ
गया।
बहरहाल उसको ये एहसास हुआ कि हमारी सारी कमाई लुट गई। लेकिन ज़ईफ़ा ने कहा कि बहरहाल मेहमान आया था तो हमने उसकी ज़ियाफ़त कर दी।
बिल्कुल
इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब वापस होते हैं तो इत्तेफाक से रास्ते में कहीं वो ज़ईफ़ा
दोबारा
मदीने
मिलती है।
मदीने में आती है, वो ज़ईफ़ा मदीने के रास्ते से गुजरती है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब उसे देखते हैं तो इमाम ने उससे सवाल किया। आप ये अहम नुक्ता गौर कीजिए, इमाम उससे कह रहे हैं क्या तूने मुझे पहचाना?
सही
आज के माहौल को देखिए आप, लोग मेहमानों को देख के मसन क्या
रास्ता
नाम
बदल लेते
रास्ता
हैं,
बदल
जिसका
लेते हैं,
देना होता है
या कोई
उससे तो
नया
खास तौर
शख्स,
पे।
अगर ये गुमान भी ना हो, ये नया शख्स होता है तो उसको देख के रास्ता बदल लेते हैं कि कहाँ अभी मुसीबत का वक्त है और कहाँ हम मशगूल हैं और ये ज़बरदस्ती आ जाएंगे। लेकिन इमाम ने खुद, ये सबक है, हम लोग उमूमन क्या नाम है आइम्मा अलैहिस्सलाम की इन फजीलतों को बयान करके गुजर जाते हैं,
बिल्कुल
लेकिन ये हमारी ज़िंदगी से रब्त है इसका।
बिल्कुल
आपने फरमाया कि तूने मुझे पहचाना ए
बिल्कुल
ज़ईफ़ा, वो गौर करती है, नहीं पहचानती है वो,
अच्छा
कहा कि मैं वही हूं कि जिसकी तूने ज़ियाफ़त की थी हज के सफर में। अच्छा। तो खुलासा जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसके लिए फिर जब उसको पहचानवा दिया तो उसको 1,000 गोसफंद,
1,000 गोसफंद,
किस एक गोसफंद के बदले
एक
में, एक
उस
हजार
जानवर के
गोसफंद,
बदले 1,000 जानवर।
हजार जानवर, एक
सही,
हजार यानी गोया दीनार।
1,000 दीनार।
हाँ, और उसके बाद ये तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्योंकि तीन लोग थे वहां, फिर
हाँ,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उतनी ही मकदार में, जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर ने उतनी ही
उतनी ही
मकदार में।
मकदार उसको
अब
दी।
आप देखें, महसूस कीजिए कितनी सखावत थी आपकी,
ये रसूल के हाथों पे तरबियत पाने
तरबियत पाने
वाले
वाले इंसान
वो
हम लोग। बहरहाल
जवानान
देखिए,
थे।
एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में, यहाँ ये बहुत अहम नुकता है, इसकी तरफ अर्ज करता चलूँ और बयान कर दूँ कि अक्सर लोगों का कैलकुलेशन जो है माल और दौलत से मुताल्लिक मादी कैलकुलेशन होता है,
बिल्कुल
लोग मुहासिबात करते हैं कि हम इतने पैसे देंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा। लेकिन इस्लाम ने एक अजीब कंसेप्ट दिया, इस्लाम ने इन तमाम मादी मुहासिबात और कैलकुलेशन से हट के एक कंसेप्ट दिया है कि तुम अगर खुदा की राह में एक दिरहम खर्च
अपने खुलूस
करोगे,
से तुम
अपने
जितना भी
खलूस से
दोगे,
जितना भी दोगे,
खुदा फिर
खुदा
अपने हिसाब
अपने
से,
हिसाब से
और
उसका अता करेगा।
हाँ बिल्कुल, जो खुदा
यहां
उसका
पर
जवाब देना चाहेगा।
इमाम हसन
बिल्कुल
अलैहिस्सलाम की फजीलत को एक तरफ देखें,
जी।
दूसरे खुदा पर एतकाद और ईमान और उसकी गोया बरकतें जो खुदा ने दी,
बहरहाल वो हमारे लिए मिसाली नमूना
मिसाली
है,
नमूना।
उनकी हमें पैरवी करनी है।
जी
नाज़रीन कराम, आपसे बहुत माजरत के साथ, क्योंकि हमारा वक्त तमाम हो चुका है। नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्क्रीन पे आने वाले SMS और टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस को याद कर लीजिए और इसको लिख लीजिए अपने पास, ताकि अपने सवालात हम तक पहुंचा सकें। सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।